नमस्कार। सांझे विरासत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मोनिका। उंगलियों के जादूगरों से मिलिए, कालीन के कारीगरों से मिलिए। इन लोगों ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर एक छोटे से जिले को विश्व विख्यात बनाया है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में। भदोही जनपद उत्कृष्ट डिजाइन के कालीन के निर्माण और निर्यात के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ लगभग 63,000 कारीगर इस कार्य से जुड़े हुए हैं। भदोही जनपद में कुल लूमों की संख्या 1,00,000 से अधिक है तथा 500 से अधिक निर्यात इकाइयाँ यहाँ इस वक्त कार्यरत हैं। हस्त निर्मित कालीन अंतर्राष्ट्रीय बड़े बाजारों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इससे पहले कि हम कालीन के बारे में जानें, बुनकरों के बारे में जानें, आइए भदोही के बारे में जानते हैं। भदोही जनपद का गठन 30 जून 1994 को उत्तर प्रदेश के 65वें जनपद के रूप में वाराणसी जनपद के कुछ भागों को काट कर हुआ था। यानी भदोही जो जिला है उसके जो नेबरिंग सिटीज हैं वो वाराणसी हैं और मिर्जापुर हैं। भदोही का पूर्व नाम संत रविदास नगर था। ये जनपद कालीन यानी गलीचे कला के लिए दूर दूर तक विख्यात है। पूरे दक्षिण एशिया में हाथ द्वारा निर्मित कालीन का ये एक मुख्य केंद्र है, इसीलिए इस जनपद को कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में करीब 8,400 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात होता है, जिनमें से करीब 60-70% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ भदोही की है। ऐसा कोई घर नहीं जहां कालीन से जुड़ा काम ना हो रहा हो। हर घर में आपको छोटे छोटे लूम मिल्स मिल जाएंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ मशीन की ठक ठक की आवाज आने लगती है और सभी बुनकर शुरू हो जाते हैं इस बेहतरीन सी कला को जीवंत करने के प्रयास में। आप सोच रहे होंगे कालीन क्या होती है, ये कहां से आई कालीन, तो आइए जानते हैं। कालीन अरबी शब्द कालीन अथवा गलीचा, जो कि फारसी शब्द है, उस भारी बिछावन को कहते हैं जिसके ऊपरी पृष्ठ पर आधारणता ऊन के छोटे छोटे मगर बहुत छोटे घने तंतु खड़े रहते हैं। इन तंतुओं को लगाने के लिए उनकी बुनाई की जाती है। यहाँ बाने में ऊनी सूत का फंदा डाला जाता है। ये आधार वाले कपड़े पर ऊनी सूत की सिलाई कर दी जाती है। ये रासायनिक लेप द्वारा तंतु चिपका दिए जाते हैं। ऊन के बदले रेशम का भी प्रयोग कभी कभी किया जाता है, परंतु ऐसे कालीन बहुत महंगे पड़ते हैं और टिकाऊ भी कम होते हैं। कपास के सूत के भी कालीन बनते हैं, किंतु उनका उतना आदर नहीं होता। कालीन की पीठ के लिए सूत और पटसन यानी जूट का उपयोग किया जाता है। ऊन के तंतु में लचक का अमूल्य गुण होने से ये तंतु कालीनों के मुख पृष्ठ के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। फलस्वरूप जूता पहनकर भी कालीन पर चलते रहने पर वह बहुत समय तक नए के समान बना रहता है, यानी जल्दी गंदा नहीं होता। ताने के लिए कपास की डोर का ही उपयोग किया जाता है, परंतु बाने के लिए सूत अथवा पटसन का यानी जूट का। जूट के उपयोग से कालीन भारी और कड़ा बनता है, जो उसका आवश्यक तथा प्रशंसनीय गुण है। अच्छे कालीनों में सूत की डोर के साथ जूट का उपयोग किया जाता है। अब वापस से चलते हैं भदोही जिले की ओर। उत्तर प्रदेश का जिला भदोही कालीन कारोबार के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है। करीबन 50% लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्ष 2007 से 2009 तक अमेरिका में छाई वैश्विक मंदी का असर कालीन उद्योग पर पड़ा था, जिससे निर्यात का आंकड़ा गिर गया था। हालांकि उसके बाद इस उत्पाद का निर्यात प्रति वर्ष ग्रोथ कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अगर हम बात करें, कालीन का निर्यात करोड़ रुपए का हुआ था। पूर्वांचल के जिलों भदोही और बनारस में तैयार कालीन देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। एक ओर भदोही की कालीन बहुत मशहूर है, तो वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर में बनी दरी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। भारत में लगभग 10,000 करोड़ वाले इस पारंपरिक हस्तशिल्प को बौद्धिक संपदा अधिकार का दर्जा मिल चुका है। प्राचीन और आधुनिक डिजाइनों में तैयार यहाँ की कालीन की विश्व बाजार में भारी मांग हो रही है। कालीन नगरी के नाम से विख्यात भदोही और आसपास के 9 जनपदों को इस क्राफ्ट के लिए पंजीकृत किया गया है। भदोही के व्यापारी और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य अब्दुल रब ने बताया कि फिलहाल भारत अभी कालीन उद्योग के क्षेत्र में विश्व बाजार में पहले नंबर पर है, यानी ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूर्वांचल में हस्तशिल्प कालीन निर्यात प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार को इस क्षेत्र में ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। भदोही के कालीन व्यवसायी पीयूष बरनवाल का कहना है कि विश्व कालीन बिरादरी में कुलीन साबित हो रही भदोही की मखमली कालीन को 2010 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग की संजीवनी मिलने से कारीगर का हुनर विश्व बाजार में भदोही को नई मुकाम पर ले आया है। मुगल काल से ही कालीन व्यवसाय ने भदोही व मिर्जापुर परिक्षेत्र की विश्व साख कायम रखी है। GI टैग मिलने के बाद बड़े आयातक भी मखमली कालीनों की ओर आकर्षित हुए हैं और गर्दिश के दौर से गुजर रहे कालीन व्यवसाय को और अधिक बल मिला है। कालीन व्यवसाय से देश का एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। भारत से करोड़ों रुपए का कालीन प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात किया जाता है। ये उद्योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। सरकार लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। हाल ही में यूपी के इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के निवेशकों के सामने कालीन उद्योग का जिक्र किया गया था, साथ ही बढ़ावा देने की बात भी की गई थी। प्रधानमंत्री के संसदीय सीट से सटा जनपद भदोही कालीन व्यवसाय के लिए बेहद मशहूर रहा है। देश के 50% कालीन का कारोबार भदोही और मिर्जापुर से ही होता है। भदोही कारपेट सिटी के नाम से वैश्विक पटल पर मशहूर है। यहाँ के गलीचे की धमक विदेशों तक है। भारतीय कालीन तकनीक संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी एशिया में अपनी तरह का इकलौता संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना कपड़ा मंत्रालय द्वारा 2001 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद जरूर है, मगर बेहद मशहूर है। इस जनपद में मात्र 175 हेक्टेयर क्षेत्र ही है जो आरक्षित, संरक्षित, निजी और अवर्गीकृत रूप से वनाच्छादित है। कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.70% है। हमने भदोही की इस कला के बारे में जान लिया जो कि विश्व विख्यात है। अब आइए, वक्त है जानने का कि इस कला को रूप कैसे दिया जाता है, यानी इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कालीन को बनाया जाता है बुनकरों द्वारा। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि यहाँ पर मशीन का उतना उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हाथ से बुनाई की जाती है। मगर एक तरफ सोच रही हूँ कि आपको इसके प्रोसीजर से पहले ये बताया जाए क्या इतिहास रहा है कालीन का। बिना इतिहास के अगर हम प्रोसीजर पे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब तो यही होगा कि हमने ज्ञान आधा छोड़ दिया। तो आइए जानते हैं कालीन उद्योग का इतिहास क्या रहा है। भदोही औद्योगिक कालीन नगरी है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ की बनी कलात्मक और रंग बिरंगी कालीन विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले कालीन व्यापार पर 60-70% कब्जा भारतीय कालीन निर्यातकों का ही है, जिसमें औद्योगिक कालीन नगरी भदोही की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। लगभग 2,000,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार देने वाला कालीन एक कुटीर उद्योग है, जिसका उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी लोकप्रिय है। वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक बहुत ही ज्यादा मंदी देखी गई थी कालीन व्यापार में, हालांकि उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है। कालीन निर्यातक वसीम अख्तर के मुताबिक भारतीयों को कालीन बुनाई के गुर ईरानियों ने सिखाए थे, यानी ये जो कालीन की कला है वो ईरान से भारत चलकर आई थी। उस समय के साथ पुष्पित और पल्लवित होती गई, आज एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। उद्योग के जानकारों की माने तो भारत में कालीन इजाद करने की देन मुगल काल की है, यानी कहा जाता है शायद सम्राट अकबर की है। उन्होंने ही लोगों को बुनकरी कला से दक्ष करने के लिए ईरान से बुनकरों को बुलाया था। लाहौर, जयपुर और आगरा में प्रशिक्षण देने के बाद बुनकरों का काफिला GT रोड से गुजर रहा था। इसी बीच जिले के माधव सिंह के पास काफिला पहुंचने के बाद उसमें से एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद काफिले के सभी सदस्य माधव सिंह में कुछ दिनों के लिए ठहर गए, लेकिन जब उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुई तो वे वहीं उसे छोड़कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। हालांकि गांव वालों की सेवा के बाद उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो गया। ऐसे में गांव वालों की सेवा से खुश होकर उसने लोगों को कालीन की बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। रंग बिरंगे और कलात्मक कालीनों को देखकर अंग्रेज इसके मुरीद ही हो गए। अंग्रेजों ने सन 1850 में जनपद के खमरिया में ई हिल कंपनी की स्थापना कर कालीनों का विदेश में निर्यात करना शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भदोही में टेलरी एंड सन्स और गोपीगंज में ओबीटी कंपनी बनाकर कालीन उद्योग पर अपना कब्जा जमा लिया। 1947 में कालीन निर्यात 1 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। जरा सोचिए, जब हम आजाद हो रहे थे उसी दौरान 1 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात भारत ने किया था। ये तो बेहद गर्व की बात है। देश की आजादी के बाद यहाँ के तमाम लोगों ने भी कालीन कारोबार में आजमाइश शुरू कर दी। धीरे धीरे इस उद्योग ने विस्तार करना शुरू कर दिया। भदोही मिर्जापुर कालीन परिक्षेत्र से ये उद्योग आगे बढ़ता गया, जो कि आगरा, सहारनपुर, शाहजहांपुर, जयपुर, पानीपत, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। ऐसे में इस उद्योग का निर्यात आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही रहा। ये उद्योग लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। वहीं भारतीय कालीन का निर्यात प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। वर्तमान समय के निर्यातक पर गौर करें तो भारतीय कालीन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सालाना निर्यात 13,810.41 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच गया है, जिसमें 60-70% की हिस्सेदारी भदोही मिर्जापुर कालीन परिक्षेत्र के निर्यातकों की है। वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अमेरिका में आई वैश्विक मंदी का असर कालीन उद्योग पर भी पड़ा। इससे निर्यात आंकड़े में 4.8% का गिरावट दर्ज किया गया। मंदी की काली छाया न छटने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-2009 में भी भारतीय कालीन उद्योग पर इसका व्यापक असर देखने को मिला था, जिससे निर्यात आंकड़ा धड़ाम से गिर पड़ा, तो उद्योग का 23.15% का नुकसान हुआ था। हालांकि बाद में अमेरिका सहित विश्व बाजार में आई तरलता से भारतीय कालीन उद्योग की सेहत में सुधार आया। समय के साथ लोगों ने इस कारोबार में भाग्य आजमाना फिर से शुरू कर दिया। वैसे अब देखा जाए तो निर्यात आंकड़े में प्रतिवर्ष काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड के कारण 2 वर्ष उद्योग को नुकसान उठाने पड़े। इसकी भी वजह से जिस रफ्तार के साथ निर्यात आंकड़ा बढ़ना चाहिए था, उस अनुपात में वो नहीं बढ़ पाया। मगर हम सोच रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इसको बढ़ावा मिले और इस हस्तनिर्मित कला को जीवंत कर दिया जाए एक बार फिर से। आप जानते हैं कि कालीन बनाने में कितनी मेहनत और मशक्कत लगती है। वैसे तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी कला को जीवंत करने में बहुत मेहनत मशक्कत लगती है। एवरी आर्ट नीड्स अ मैजिकल ब्लेंड ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस एंड आर्टिस्टिक अप्रोच। कालीन बुनने के पहले ही ऊन का रंग लिया जाता है। इसके लिए ऊन की लच्छियों को बांस के डंडों में लटकाकर ऊन का रंग गर्म घोल में डाल दिया जाता है और रंग चढ़ जाने पर उन्हें निकाल लिया जाता है। आधुनिक रंगाई मशीन द्वारा होती है। कुछ मशीनों में रंगाई प्रायः हाथ की रंगाई के समान ही होती है, किंतु रंग के घोल को पानी की भाप द्वारा गर्म कर दिया जाता है और लच्छियां मशीन के चलने से चक्कर काटती जाती हैं। दूसरी मशीनों में ऊन का धागा बहुत बड़ी मात्रा में ठूंस दिया जाता है और गर्म रंग का घोल समय समय पर विपरीत दिशाओं में पंप द्वारा चलता रहता है। ऐसी मशीनें हाल ही में चली हैं। कालीन में प्रयुक्त होने वाले ऊन के धागे की रंगाई तभी संतोषजनक होती है जब रंग प्रत्येक तंतु के भीतर बराबर मात्रा में प्रवेश करे। इसका अनुमान तंतु के बाहरी रंग से सदैव नहीं हो पाता और अच्छी रंगाई के लिए कुछ धागों की गुच्छी काट कर देख ली जाती है। अच्छे कालीन के लिए संतोषजनक रंगाई उतनी ही आवश्यक है जितनी पक्की और ठोस बुनाई। कीमती कालीनों के लिए पूर्णतया पक्के रंगों का उपयोग आवश्यक होता है। साधारण कालीनों के लिए रंग को प्रकाश के लिए तो अवश्य ही पक्का होना चाहिए और धुलाई के लिए जितना ही पक्का हो उतना अच्छा। ऊन के ऊपर प्राकृतिक चर्बी रहती है जिससे रंग भली भांति नहीं चढ़ता, इसलिए ऊन को साबुन और गर्म पानी में पहले धो लिया जाता है। साबुन के कुछ दुर्गुणों के कारण संकलित प्रक्षालकों यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का प्रयोग अब ऊन की धुलाई में अधिक होने लगा है। संसार भर में हाथ की बुनाई प्रायः एक ही रीति से होती है। ताने ऊर्ध्वाधर दिशा में तने रहते हैं, ऊपर वे एक बेलन पर लपेटे रहते हैं जो घूम सकता है, नीचे वे एक अन्य बेलन पर बंधे रहते हैं। जैसे जैसे कालीन तैयार होता जाता है वैसे वैसे उसे नीचे के बेलन पर लपेटा जाता है। जैसा साधारण कपड़े की बुनाई में होता है, ताने के आधे तार यानी कि डोरे उसके आगे पीछे हटाए जा सकते हैं और उनके बीच बाना डाला जाता है। इस प्रकार गलीचे यानी कालीन की बुनाई उसी सिद्धांत पर होती है जिस पर साधारणता कपड़े की होती है, परंतु एक बार बाना डालने के बाद ताने के तारों पर ऊन का टुकड़ा बांध दिया जाता है। टुकड़ा काट कर बांधना और लंबे धागे का एक सिरा बांध कर काटना, दोनों प्रथाएं बेहद प्रचलित हैं। बंधा हुआ टुकड़ा लगभग 2 इंच लंबा होता है और अगल बगल के तारों में फंदे द्वारा फंसाया जाता है। फंदा डालने की 2 रीतियां हैं, एक तुर्की और एक फारसी। ऊन के फंदों की एक पंक्ति लग जाने के बाद बाने को 2 तार यानी डोरे से बुन दिया जाता है। तब फिर ऊन के फंदे बांधे जाते हैं और बाने के तार डाले जाते हैं। प्रत्येक बार बाने के तार पर जाने के बाद लोहे के पंजे से ठोक कर उनको बैठाया जाता है, जिससे कालीन की बुनाई गफ हो। बाना डालने की रीत में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, जिससे कालीन के गुणों में कुछ परिवर्तन देखा जाता है। आजकल साधारणता कालीन बहुत चौड़े बुने जाते हैं, इसलिए इनको बुनते समय तानों के सामने कई एक कारीगर बैठते हैं और प्रत्येक लगभग 2 फुट की चौड़ाई में ऊन के फंदे लगाता है। कारीगर अपने सामने आलेखन रखे रहते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं डिजाइन ट्रेसेस, और उसी के अनुसार रंगों का चुनाव करते हैं। फंदे लगाने की रीति से स्पष्ट है कि ऊन के गुच्छे कालीन के पृष्ठ से समकोण पर नहीं उठे रहते, कुछ ढालू रहते हैं। हाथ के बुने कालीनों की ये विशेष लक्षण है और ये उनकी बेहद खूबसूरत, बेहद कलात्मक खासियत है। कालीन बुने जाने के बाद ऊन के गुच्छों के छोर को कैंची से काट कर ऊन की ऊंचाई बराबर कर दी जाती है। आवश्यकता अनुसार तंतुओं को न्यूनाधिक ऊंचाई तक काट कर उभरे हुए हैं बेल बूटे आलेखन के अनुसार बनाए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग की डिजाइन चाहिए होती है कालीन पर। अगर आपको भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग की डिजाइन कालीन पर, अपनी मनपसंद डिजाइन आप बनवा सकते हैं। बदोही के काफी ऐसे बुनकर हैं जो आपकी दी हुई डिजाइन को हूबहू वैसे ही कलात्मक ढंग से बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। ऐसे कालीनों में यद्यपि ऊन की हानि हो जाती है और सुंदरता बढ़ जाती है और ये अधिक पसंद किए जाते हैं। अपने डिजाइन की कालीन अपने घर में सजाई जाए तो कितना खूबसूरत होगा। कुछ कालीन दरी के समान किंतु ऊनी बाने से बुने जाते हैं। इनका प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया है क्योंकि आजकल फैंसी डिजाइनर एम्ब्रॉयडर्ड और बहुत ही कलात्मक कालीन आने लगी हैं। हाथ से बने प्रथम श्रेणी के कालीन मशीन से बने कालीनों की अपेक्षा बहुत अच्छे होते हैं। हाथ से प्रत्येक कालीन विभिन्न आलेखन के अनुसार और विभिन्न नाप मेल अथवा आकृति से बुना जाता है। ये सब सुविधाएं मशीन से बने कालीनों में नहीं मिलती है। कालीन में प्रति वर्ग इंच ऊन के 1 से लेकर 400 तक गुच्छे डाले जाते हैं। साधारणता 20 से 24 गुच्छे रहते हैं। भारत, ईरान, मिस्र, तुर्की और चीन हाथ के बने कालीनों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। भारत में मिर्जापुर, भदोही, कश्मीर, मसूलीपट्टनम आदि स्थान कालीनों के लिए बेहद विख्यात है और इन सब कालीनों में फारसी गांठ का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कालीन में मशीन से बुनाई की, तो मशीन की बुनाई कई प्रकार की होती है। सबसे प्राचीन ब्रुसेल्स कालीन है। इसमें कालीन के पृष्ठ पर ऊन के धागों से कटा सिरा नहीं रहता, दोरा हुआ धागा रहता है। बुनावट ऐसी होती है कि यदि ऊन पर्याप्त पुष्ट हो तो एक सिरा खींचने पर एक पंक्ति का सारा ऊन एक समूचे टुकड़े में खिंच जाएगा और जहां आलेखन में किसी रंग का अभाव रहता है, वहां उन रंगों के धागे कालीन की बुनावट में दबे रहते हैं। केवल उसी रंग के धागे के फंदे बनते हैं जो कालीन के पृष्ठ पर दिखलाई पड़ते हैं। इन कारणों से 5 से अधिक रंगों का उपयोग एक ही कालीन में कठिन हो जाता है। बारंबार एक ही प्रकार के बेल बूटे डालने के लिए छेद की हुई दफ्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूती कपड़े में बेल बूटे बनाते समय हम प्रयोग करते हैं। ऊन का सिरा कटा न रहने के कारण ये कालीन बहुत अच्छे नहीं लगते। ऊनी धागों का अधिकांश बुनाई के बीच दबा रहता है। इस प्रकार भार बढ़ाने के अतिरिक्त वह किसी काम नहीं आता और कालीन का मूल्य बेकार बढ़ जाता है। यानी अब आप जाने मशीन वाली कालीन से कहीं ज्यादा बेहतर, खूबसूरत और अलहदा होती है हाथ से बुनी हुई कालीन, यानी हस्त निर्मित कालीन। विल्टन कालीन की प्रारंभिक बुनावट वैसी ही होती है जैसे ब्रुसेल्स कालीन की, परंतु बनते समय ऊन के फंदों के बीच धातु का तार डाल दिया जाता है, जिसका सिरा चिपटा और धारदार होता है। जब इस तार को खींचा जाता है तब ऊन के फंदे कट जाते हैं और पृष्ठ वैसा ही मखमली हो जाता है जैसा हाथ से बुने कालीन का होता है। मखमली पृष्ठ देखने में सुंदर और स्पर्श करने में बहुत सॉफ्ट होता है। तार खींचने का काम स्वयं मशीन बराबर करती रहती है। विल्टन कालीन में ऊनी मखमली पृष्ठ के गुच्छे ब्रुसेल्स कालीन के दोहरे धागे की अपेक्षा अधिक दृढ़ता से बुनाई में फंसे रहते हैं। ये कालीन बहुधा ब्रुसेल्स की अपेक्षा घने बुने जाते हैं और इनमें तौल बढ़ाने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कोमलता और कारीगरी के कारण मूल्य अधिक होने पर भी ये कालीन काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। सस्ते कालीनों की खपत अधिक होने के कारण सस्ते ऊनी विल्टन बनने लगे, जिनमें सस्ते ऊनी धागों का उपयोग किया जाता है। एक रंगे विल्टन सबसे सस्ते पड़ते हैं और उन लोगों को जो एक रंगा कालीन पसंद करते हैं, ये कालीन बेहद अच्छे लगते हैं। चौड़े विल्टन कालीन बनाने में तार वाली रीति से असुविधा होती है, इसलिए फंदे बनाने और उनको काटने में धातु की तार जगह जगह पर धातु के अंकुश का उपयोग होने लगा है। मशीन से बने कालीनों में यद्यपि ये कालीन टफ्टेड उसको छोड़कर सबसे नए हैं, तथापि बुनावट में ये पूर्व देशीय जैसे ईरान, भारत और चीन इत्यादि के कालीनों के बेहद समीप हैं। समानता इस बात में है कि ये ऊन के धागों के गुच्छों से बने होते हैं। यद्यपि गुच्छे मशीन द्वारा डाले जाते हैं और उनमें गांठें नहीं पड़ी रहती हैं। एक्समिंस्टर कालीन की विशेषता ये है कि गुच्छे खड़ी पंक्तियों में ताने के बीच डाले जाते हैं। ये डालने से पहले या बाद में काटे जाते हैं और बाने से बुनावट में कसे रहते हैं। प्रत्येक गुच्छा कालीन की सतह पर दिखाई पड़ता है और आलेखन का अंग रहता है। गुच्छों का कोई भी भाग ब्रुसेल्स और विल्टन कालीन की तरह छपा नहीं रहता, इस प्रकार ये व्यर्थ नहीं जाता। फंदे का कम से कम भाग बाने से दबा रहता है। किसी भी वर्ग के कालीन के विषय में यदि कोई अकेला शब्द है जिससे उसके संपूर्ण गुण, दोष, श्रेणी और मूल्य का ज्ञान होता है, तो वो है क्वालिटी। हम ना हर चीज की अच्छी क्वालिटी ही पसंद करते हैं, तो कालीन की क्वालिटी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। क्वालिटी प्रधानता कालीन के मुख पृष्ठ पर ऊनी गुच्छों के घने पर निर्भर रहती है। इस प्रकार ऊंची क्वालिटी, मध्य क्वालिटी और नीची क्वालिटी कालीन के व्यापार में साधारण शब्द हैं। घने बुने हुए कालीन के साधारणतया बढ़िया और लंबी ऊन का पतला धागा आवश्यक होता है। कीमती ऊन के अधिक मात्रा में लगने के साथ उच्च श्रेणी का ताना बाना आवश्यक होता है। बढ़िया पतले धागे के उपयोग और गांठों के पास पास होने से कालीन तैयार होने में समय अधिक लगता है। इस प्रकार ऊंची क्वालिटी के कालीन का मूल्य अधिक हो जाता है। कालीन की क्वालिटी एक वर्ग इंच में गांठों की संख्या से प्रदर्शित की जाती है। ये प्रथा तब तक संतोषजनक नहीं होती जब तक ये भी निश्चय ना कर लिया जाए कि गांठ इकहरे धागे से डाली गई है या दोहरे अथवा तेहरे धागे से। तेहरे धागे से बना कालीन दोहरे धागे से बने कालीन की अपेक्षा प्रति वर्ग इंच कम गांठों का होने पर भी घना हो सकता है। फिट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी CEPC हाथ से बुने हुए कालीन और अन्य फ्लोर कवरिंग निर्यातकों के लिए भारत की शीर्ष संस्था है। परिषद निर्यातकों को नए बाजारों का पता लगाने, वित्तीय सहायता देने, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में वित्तीय भागीदारी, क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित करने और व्यापार विवादों को निपटाने में ये सहायता करती है। और अगर हम वहीं कालीन की बात करें तो एक कालीन तैयार करने के लिए हाथ से गुच्छेदार दृष्टिकोण को लगभग 6 से 7 सप्ताह लग जाते हैं। दूसरी ओर हाथ से बुने हुए कालीन को बनने में 14 से 16 सप्ताह का समय लगता है। देखा, मैंने कहा था ना, एवरी आर्ट इज अ मैजिकल ब्लेंड ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। चीन, तुर्की और USA जैसे देशों से भयंकर प्रतिस्पर्धा के बावजूद जो मशीन निर्मित कालीनों के विशेषज्ञ हैं, भारत की हस्त निर्मित कालीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय अपील बरकरार रखी है। भारत में आप विभिन्न प्रकार के कालीन फर्श शैलियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कालीन उत्पादकों की खोज कर सकते हैं। भारत बेहद कम कीमतों पर विभिन्न प्रकार के कालीनों के लिए जाना जाता है। अमूमन आपको एक कालीन की कीमत 300 प्रति वर्ग फुट मिल सकती है और कई ज्यादा महंगे कालीन भी मिलते हैं। हाथ से बुने हुए ऊनी आसन, टफ्ट्स के साथ ऊनी कालीन, ऊनी रेशों से बने कालीन, हाथ से बनी ऊनी धूरियां, ये सब बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। एक साक्षात्कार में ओवीटी के प्रबंधक निदेशक गौरव शर्मा ने कहा था कि कंपनी के पास बेहतरीन बुनाई कला देने के लिए ठोस निर्माण प्रक्रिया और प्रशिक्षित कारीगर हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके कुछ सबसे कुशल कारीगर एक दिन में 8,000 गांठ बांध सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके हाथ से बुने हुए गुणों की गुणवत्ता 1500 और 300 समुद्री मील प्रति वर्ग इंच से भिन्न होती है। बुनाई की प्रक्रिया में 4 से 18 महीने तक का समय लग जाता है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 2 ओबीटी गलीचे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा 452 वर्ग मीटर लंबा है और इसमें 100 मिलियन समुद्री मील हैं। यूएसए में निगम का एक बड़ा बाजार है। कंपनी के लिए इंटरनेट शॉपिंग के जरिए कालीन खरीदना अब आसान हो गया है, जहां कंपनी थोक कीमतों पर कालीन पेश करने का दावा भी करती है। कालीन के इस खूबसूरत हस्तनिर्मित व्यवसाय में चुनौतियां भी कम नहीं है। 1990 तक ये उद्योग व्यवसाय की दृष्टि से चरम पर था, हालांकि इसके बाद धीरे धीरे बाजार गिरता गया। वर्ष 2000 के बाद भारत में हो रहे बाल श्रम के नाम पर विदेशों में हो रही किरकिरी ने उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा दिया। एक झटके में विदेशों से हो रहे व्यापार बंद हो गए, जिससे करोड़ों का ऑर्डर रद्द हो गया। अब GI टैग से कालीन का कारोबार फिर से फल फूल रहा है। आज भी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड सहित कई यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों में हस्तनिर्मित कालीनों की मांग पहले जैसी ही है। कालीन उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और इसकी सतत वृद्धि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, अनुसंधान और विकास आदि के रूप में कालीन, वस्त्र और अन्य संबंध क्षेत्रों का हर संभव तकनीकी सहायता मुहैया कराने का प्रयोजन भारत सरकार ले चुकी है। और वहीं अगर हम भदोही की कालीन की बात करें तो एक बहुत ही खास बात इससे जुड़ी हुई है। अक्सर आप देखते होंगे अलग अलग जगह पर प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होता है मेड इन इंडिया, या जहाँ भी बना होता है वैसा लिखा होता है, मगर जब भी आप भदोही की कालीन को देखेंगे, उसको पलट कर देखिएगा, उस पे हमेशा लिखा होता है मेड इन भदोही। तो आज हमने जाना भदोही की हस्तनिर्मित इसकी एक बेहद खूबसूरत कला के बारे में, जिसको हम आपके माध्यम से और सांझी विरासत के माध्यम से जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए किस्से के साथ, कुछ नई सांझी विरासत की कहानियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।